मोक्षमार्गसिनेतारं भेत्तारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आयु के आश्रव बतला रहे हैं, चार गति संबंधी जो आयु होती है वहां क्यों जाना पड़ता है, कौन जाते हैं ये बताते हैं। बहुआरंभ परिग्रहत्व नारकस्य आयुषः, आरंभ प्राणी पीड़ा हेतु व्यापार, आरंभ का अर्थ प्राणियों को पीड़ा पहुंचती है तो उस पीड़ा में कारणभूत जो चेष्टा होती है उसको आरंभ कहते हैं। ममेदम बुद्धि लक्षण परिग्रह, ये मेरा है, इस प्रकार की मान्यता है लक्षण जिसका वो परिग्रह है। आरंभाश्च परिग्रहाश्च आरंभ परिग्रहाः, तो ये आरंभ और परिग्रह हो गए। बहव आरंभ परिग्रह यस्य सः बहु आरंभ परिग्रह, जिसके पास बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह है उसको बहुआरंभ परिग्रह कहते हैं। तस्य भावः बहुआरंभ परिग्रहत्व, उसका जो भाव है बहुत आरंभ परिग्रह पना, अर्थात बहुत आरंभ परिग्रह का होना, उसका अस्तित्व, हिंसादिक्रूर कर्माजस्र प्रवर्तन परस्वहरण विषयातिग्रद्धि कृष्ण लेश्या विजात रौद्र ध्यान मरण कालतादि लक्षणों नारकस्यायुष आश्रवो भवति। बहुत आरंभ और परिग्रह का होना निश्चित ही नरक आयु के आश्रव है। और क्या क्या हो सकता है उसमें? हिंसादिक क्रूर प्रवृत्तियां में निरंतर प्रवृत्ति करना, हिंसादिक क्रूर क्रियाओं में निरंतर प्रवृत्ति करना, कराना, फिर परस्वहरण दूसरों का धन चुराना, विषयातिग्रद्धि इंद्रिय विषयों में अधिक लोलुपता रखना, आसक्ति रखना, कृष्ण लेश्या से उत्पन्न जो आर्त रौद्र ध्यान है उसके साथ मरना, मरण काल में कृष्ण लेश्या होना आर्त रौद्र ध्यान पूर्वक, आर्त नहीं कह रहे, कृष्ण लेश्याभिजात रौद्र ध्यान मरण कालता। फिर आदि शब्द से और भी उसमें कुछ कारण दिए हुए हैं, वो अपन देखते हैं। आदि शब्द से सर्वार्थ सिद्धि की टिप्पण जो प्रभाचंद्र आचार्य द्वारा रचित है उसमें एक बार खोज करते हैं। नहीं, इसमें तो एक ही टिप्पणी दी है, अजस्रम अनवरतम। अजस्र का अर्थ होता है लगातार, निरंतर, बिना रुके। तत्वार्थ वृत्ति में देखते हैं, निश्चल वैरम, वैर न छोड़ना भी नरकाश्रव, नरकायु का आश्रव। परोपकार मति रहितत्व, दूसरों की भलाई का कभी जीवन में विचार ही नहीं करना, ये भी नरक जाने का कारण है। बाल वृद्ध स्त्री हिंसनम, बच्चों की हिंसा करना, बूढ़ों की हिंसा करना, स्त्रियों की हिंसा करना भी नरकायु का आश्रम है। अब सर्वार्थ सिद्धि में जहां पर नरकों का वर्णन है ना तीसरे अध्याय में, वहां टिप्पण में दिया हुआ है कि वहां कौन जाते हैं। देखो वो प्रयास करते हैं अपने निकालने का। विश्वासघात करने वाले भी नरक गामी होते हैं, ऐसा भी उसमें पंक्ति आई है। स्त्रियों का विश्वासघात, बच्चों का विश्वासघात, साधुओं का विश्वासघात और वृद्धों के साथ विश्वासघात करने वाले नरक गामी होते हैं, ऐसी भी पंक्ति थी। देखो जब मिलेगी तो हम बता देंगे। आहुक्तो नरकस्य आयुष, नारकस्य आयुष आश्रव, नारक की आयु संबंधी आश्रव बता दिया। तैर्यज्ञोनस्य इदानीं वक्तव्येत्यत्रोच्यते। तैर्यज्ञोन, तैर्यंश संबंधी जो योनि होती है उसमें उत्पन्न होने वाले जीव को तैर्यक यौन कहते हैं। उसका आश्रव क्या है, उसकी आयु का आश्रव क्या है? माया तैर्यक यौनस्य, तैयज्ञियों की जो आयु है उसका आश्रय माया है। आत्मनः कुटिल भावो, आत्मा का जो कपट भाव रहता है उसको माया कहते हैं। तत्प्रपंच हो, उसका विस्तार क्या है? मिथ्यात्वोपेत धर्म देशना, मिथ्यात्व से युक्त होकर धर्म का उपदेश करना, मिथ्यात्व से संपन्न जो धर्म देशना होती है, धर्म का उपदेश होता है। निःशीलता, संधान प्रियता, छल कपट करना जिनको प्रिय होता है वो। फिर नील कपोत लेश्यार्थ ध्यान मरण कालतादि, नील लेश्या, कपोत लेश्या पूर्वक जो आर्त ध्यान होता है मरण काल में, अगर नील और कपोत लेश्या के साथ आर्त ध्यान हो जाए मरते समय, तो वो भी तिरेंच आयु का आश्रव। कषायों से जो मन वचन पाए काय की प्रवृत्तियों पर एक रंग चढ़ता है उसको लेश्या बोलते हैं। लेश्या का अर्थ योग की प्रवृत्ति, मन वचन काय की प्रवृत्ति, लेकिन उसमें कषायों का रंग अगर घुला हो तो वो लेश्या कहलाती है। हाँ, तो वो छह लेश्याएं होती है, उसमें तीन अशुभ लेश्याओं में कृष्ण नील कपोत लेश्या है, तो उसके साथ अगर मरण हो जाए आर्त ध्यान के साथ तो तिरेंच गति होती है। इसको और समझना होगा, क्योंकि लेश्या जो है ना एकदम एक छोटी वस्तु नहीं है, लेश्या को विस्तार से समझना आवश्यक है। घुमटसार जीव कांड में आती है और धवला में लेश्या आती है पहली पुस्तक में। फिर कहते हैं आह व्याख्यात स्तैर्यज्ञोनस्य आयुष आश्रव, तैर्यज्ञोन संबंधी आयु का आश्रव बता चुके आप। इदानीं मानुषस्य आयुष को हेतुरित्यत्र उच्यते, मानुष की जो आयु है उसका क्या हेतु है, ऐसा प्रश्न करने पर यहाँ कहते कहा जाता है अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य। अल्प आरंभ, कम हिंसा करना, आजीविका के साधन आदि कम रखना, पैसे की कमाई वगैरह कम करना, साधनों की कमी रखना, और अल्प परिग्रहत्वम 10 परिग्रहों को थोड़ी मात्रा में रखना। मानुषस्य, ये मनुष्य पर्याय का संबंधी आयु का आश्रम। तद व्यास उसको और थोड़ा सा विस्तृत कर देते हैं कि और क्या क्या करने से मनुष्य आयु हो सकती है प्राप्त। ये अपन उस जन्म में करके आए हुए हैं, यहाँ पर जो भी मनुष्य आयु अभी प्राप्त कर चुके हैं वो ऐसे ही प्राप्त करके आए हैं। विनीत स्वभाव, एकदम विनम्र स्वभाव होना। प्रकृति भद्रता और अच्छी प्रकृति रखना, सज्जन प्रकृति का होना। प्रगुण व्यवहार, सीधा साधा व्यवहार रखना, आड़ा टेढ़ा नहीं रखना व्यवहारता। तनु कषायत्व, थोड़ी कषाय होना। और मरण काला संक्लेशता आदि, मरते समय आकुल व्याकुल न होना, अथवा मरते समय तीव्र कषाय का न होना, ये मनुष्य आयु का आश्रव है। मनुष्य आयु के आश्रव में एक बात और बता रहे हैं, स्वभाव मार्दवंश, मृदुर भाव मार्द, नरमाई, स्वभावीन मार्दम, स्वभाव मार्दम यानी ऐसी प्रकृति हो, एकदम नरम प्रकृति हो, शारीरिक रूप से नहीं, अंतरंग भावों की अपेक्षा नरम भाव, कठोर न हो। उपदेश अनपेक्षम इत्यर्थ, लेकिन ये स्वभाव मार्दव का अर्थ होता है कि स्वाभाविक रूप से वैसी प्रकृति हो। नहीं तो कभी क्या होता है कि अपनी प्रकृति उपदेशों के द्वारा भी बदलती है, कठोर लोग नरम हो जाते हैं साधु की संगति में आकर के, तो वो मनुष्य आयु का आश्रम नहीं है। जो बिना उपदेश के जो एक नरमाई रहती है प्रकृति में, वो मनुष्य आयु का आश्रव है। एतदपि मानुषस्य आयुष आश्रव, ये भी आश्रव है। पृथक योग करणम किम अर्थम, अलग से सूत्र क्यों बना दिया आपने? उधर ऊपर ही साथ में लिख देते तो फिर एक सूत्र के अक्षर बच जाते, तो आपने अलग से क्यों लिखा? तो बोले उत्तरार्थम, देवाश्र आश्रव वो भी यथा स्यात, ये देवायों का भी आश्रय होता है। प्राकृतिक नरमाई रखना, इससे देवायु का भी आश्रय होता है। तो इसलिए इसको आगे जोड़ने के हिसाब से यहां रख दिया है अलग से। निशील व्रतत्वं च सर्वेषां, चारों आयु का आश्रय। हाँ, सहज रूप से ऐसा ही नेचर रहो, नर्मय नम्र हो बिल्कुल। च शब्दोधिकृत समुच्चयार्थ, ये जो अधिकार प्रकरण चल रहा है उसको यहाँ पर संग्रहित कर लेना, उसके साथ इसको अगर जोड़ेंगे तब वो चीज बनेगी। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के साथ में अगर शील व्रत न हो तो भी मनुष्य आयु होती है। फिर निष्क्रांतानी शील व्रत, निश्चील व्रत, सर्वेषां ग्रहणम सकल आयु आश्रव प्रतिपत्त्यर्थम। लेकिन ये शील और व्रत से रहित होना सभी आयुओं में ले जा सकता है किसी जीव को। किन देवायुषोपि भवति, बोले देवायु में भी कोई शील और व्रतों के बिना जा सकता है? तो आचार्य कहते हैं कि सत्यम भवति भोग भूमि जापेक्षया, भोग भूमि में तो शील व्रत होते नहीं है, वो नियम से देवायु को प्राप्त होते हैं। तो ये निश्चील और निर्व्रत अवस्था जो होती है, व्रत रहित, ये चारों आयुओं के आश्रव में सम्मिलित है। अतः चतुर्थ से आयुष का आश्रव इत्यत्र उच्यते, चौथी जो देवायु है उसका आश्रव क्या है ऐसा पूछने पर यहां कहते हैं, सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। सराग संयम और संयमा संयम पहले बतला चुके हैं। अकाम निर्जरा, अकामश चारक निरोध बंधन बद्धीशु, क्षुत्रिष्णा निरोध ब्रह्मचर्य भूषय्या मलधारण परितापादि। कोई निरपराध व्यक्ति किसी कारण से जेल में चला जाए या उसको बंधन में डाल दिया जाए, तो वो भूख को सहन करता है, प्यास को सहन करता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जमीन पर सोता है, शरीर पर मैल जम जाता है उसके, और परिताप भी होता है उसको। तो इन सब के कारण भी वो देवायु का आश्रय होता है, क्योंकि वो उस समय शांति से ये सब सहन कर रहा है, जो कुछ उसको मिल रहा है चुपचाप सहन कर रहा है। अकामेन निर्जरा अकाम निर्जरा, कामना रहित निर्जरा हो जाए तो फिर अकाम निर्जरा है। बाल तपो मिथ्या दर्शन उपेत मनुकायक मनुपायक कायक क्लेश प्रचरम निकृति बहुल व्रत धारणम। बाल तप किसको कहते हैं? कि मिथ्या दर्शन से जो युक्त होता है और मोक्ष का जो उपाय नहीं होता और जिसमें शरीर को क्लेशित करने की अधिकता पाई जाती है, और निकृति बहुल यानी उसमें आत्मा के साथ ही एक प्रकार से छल होता है, क्योंकि सच्चा मार्ग नहीं है लेकिन सच्चा मार्ग समझकर वैसा करते चले जा रहे हैं। तो अथवा व्रतों को धारण करके भी कपट करना, ये अर्थ नहीं लेना है यहाँ। निकृति बहुल व्रत धारण, व्रत धारण कर रहे हैं और तान्येतानि देव दैवस्य आयुष आश्रव हेतवो वेदितव्या, ये सब देवायु के आश्रव है ऐसा जानना। दैवस्य, किमे तवानेव दैवस्य आयुष आश्रव, क्या इतने ही आश्रव है देवायु का? न इत्याह, नहीं और भी है। सम्यक त्वंच, सम्यक भी देवायु का आश्रव है। किम दैवस्य आयुष आश्रव इत्यनुवर्तते, अनुवर्तन वही चल रहा है, यानी प्रसंग यही है कि देवायु का आश्रव सम्यक्त्व भी उसमें कारण है। अविशेष अभिधानी भी सौधर्म आदि विशेष गति, यहां पर सम्यक्त्व जो है वो सौधर्म आदि देवों की आयु का आश्रव है, ये जान लेना। ऐसा मत समझना कि देवायु का मतलब चारों निकायों में जाएगा वो सम्यक्त के साथ, नहीं, केवल वैमानिक देव होगा। कोता ये कैसे जाना आपने? बोले पृथक करणार्थ, अलग से इस सूत्र का वर्णन किया है इसलिए। यद्येवम्, यदि ऐसा है तो पूर्व सूत्र उक्त आश्रव विधि रविशेषेण प्रसक्त, तो फिर पिछले सूत्र में जो आश्रव की विधि बताई उसमें कोई भेद नहीं रहेगा, ऐसा प्रसंग आ जाएगा। तेन सराग संयमा संयम संयमा संयमाओ अपि भवनवास्याद्यायुष आश्रव प्राप्नुत, बोले कि उसमें आपने सराग संयम और संयमा संयम भी लिखा था देवायु के आश्रव में, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि सम्यक्त जो है वो वैमानिक देवों का देवायु के आश्रव का कारण है, तो फिर वहां पर तो वो सराग संयम और संयमा संयम जो है वो तो सभी आयु का आश्रय हो जाएगा चारों निकाय के। नैष दोष, ऐसा नहीं है जैसा तुम बताना चाह रहे हो, वैसा नहीं निकलेगा अर्थ। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि बोले सम्यक तो अभावे तद व्यपदेशाभावात तब तद उभयम अपि अत्रांतर भवति, बोले सम्यक तो नहीं होगा तो सराग संयम और देश संयम कहां से हो जाएगा, और यदि सम्यक्त से वैमानिक आयु बंद हो रहा है तो फिर सराग संयम और संयमा संयम से भवनत्रिक की आयु का बंद कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, वो वैमानिक देवों की आयु का आश्रय होगा। इसके उपरांत कह रहे हैं आयुषोनंतरम उद्दिष्टस्य नामन आश्रव विधौ वक्तव्ये तत्राशुभ नामन आश्रव प्रतिपत्तिर्थमाह। आयु के पश्चात जो नाम आता है कर्म का, आठ कर्मों में आयु के बाद नाम कर्म का कथन आता है, तो नाम कर्म की आश्रव विधि यहाँ पर बताई जा रही है। पहले अशुभ नाम कर्म बतला रहे जिससे कुरूप, लूले, लंगड़े, दुस्वर, अप्रिय आदि होते हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। पहले दुर्भाग्य का उदय जिससे होता है, ऐसे नाम कर्म। योग वक्रता विसंवादन चाशुभस्य नामनः, योग वक्रता का अर्थ होता है मन वचन काय की कुटिलता करते रहना, हमेशा कपट करते रहना, तो इससे अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है, कुरूपता प्राप्त होती है। फिर विसंवादनम अन्यथा प्रवर्तनम, विसंवादन का अर्थ क्या है? ननुच नार्थ भेद, बोले वही कुटिलता, विसंवादन में भी कुटिलता हो रही है और यहां भी कुटिलता हो रही है, बोले नहीं, योग वक्रता सत्यमेव, सही बात है कि दोनों में समानता तो है, लेकिन स्वगता रोग योग वक्रता, अपने मन वचन काय में कपट रखना, कुटिलता रखना योग वक्रता है, और दूसरों को उल्टी प्रवृत्ति कराना वो विसंवादन है। वो कैसे? तो बोले सम्यक अभ्युदय निश्चय सार्थासु क्रियासु प्रवर्तमानस्य मन प्रवर्तमानम अन्यम तद विपरीत काय वांग मनोभिर विसंवादयति मैवं कार्षीरेवं कुर्विति। कोई बिल्कुल समीचीन आगम सम्मत स्वर्ग मोक्ष में साधन भूत क्रियाओं में प्रवृत्ति कर रहे हैं, बिल्कुल शास्त्र के अनुसार वो क्रियाएं कर रहा है कोई, तो उसको उससे विपरीत अपने मन वचन काय से ऐसे इशारा इशारा करके या फिर अपने वचनों से बोल करके ऐसा मत करिए, क्या कर रहा है तू, ऐसा कर, इस तरह से उसकी क्रियाओं को बदलवा देता है और आगम से विरुद्ध क्रियाएं कराता है, तो उसका नाम विसंवादन है। जैसे दक्षिण की जो क्रियाएं होती है और उत्तर की क्रियाएं होती है, दोनों में अंतर होता है। तो अब अगर कोई दक्षिण की क्रिया करता हुआ मिल जाए किसी को, और मान लो उत्तर वाला आकर दक्षिण में दक्षिण की क्रिया करने लग जाए, तो फिर उसको वहां से कोई आकर के बोलता है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, तुम ऐसा करो जैसा अपने यहां चलता है। तो इसका नाम विसंवादन है। ये नाम कर्म की अशुभ प्रकृतियों के 20 कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति का बंध बांधने वाला पाप है। आगम से विरुद्ध क्रिया कराना, अपने यहां का क्या मतलब हुआ, अपने यहां क्या हो गया, ये तो जिन शासन है, इसमें अपने यहां नहीं चलता उनके यहां चलता है, ये अपने और उनके का भेद करने वाला कौन है, ये दीवारें खड़ी करने वाला, ये टुकड़े करने वाला कौन है, किसका मस्तिष्क है जो जैन शासन में ऐसे खंड कर रहा है। तो ये विसंवादन कहलाता है। एक विसंवाद शब्द और आएगा सातवें अध्याय में, यहां पर ये विसंवादन शब्द है कि दूसरों को आगम विरुद्ध प्रवृत्ति कराना और नाना प्रकार के तर्क कुतर्क दे करके आगम के कथन से हट करके किसी अन्य धारा को पुष्ट करना। अब आगम से भिन्न जो धारा होती है उसको आज के युग में पंथ व्यामोह कहते हैं, पंथवाद कहते हैं, कुछ भी कह लो, लेकिन जो आगम सम्मत क्रिया है, कोई भी क्रिया ऐसी है जो आगम में मिल रही है अपने को, तो वही अपने लिए हितकारी है। उससे भिन्न क्रिया करवाना, सही करने वाले को गलत करवाना, ये विसंवादन है। फिर लोग पूछते हैं कि हम इतने कुरूप क्यों हैं, ऐसे प्रश्न पुराणों में आते हैं ना, जैसे दुर्गंधा की कथा में आती है कि मेरे शरीर में इतनी दुर्गंध क्यों आती है। नंदीशेण मुनि की कथा में आता है उनके शरीर से बकरे की गंध आती थी, ऐसा क्यों है। तो फिर जब भवांतरों का वर्णन करते हैं तब पता चलता है कि ऐसे ही पाप कमाए थे। तो अशुभ नाम कर्म का बंध होता है, अशुभ नाम कर्म बहुत भारी पड़ता है, बहुत भारी पड़ता है। माने वो स्वयं स्वीकार नहीं कर पाता कि मैं ऐसा हूं, मेरे ही कर्म के फल स्वरूप मेरी ऐसी हालत बनी है, ये बात वो खुद स्वीकार नहीं कर पाता। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका वर्ण उनको खुद पसंद नहीं है, तो अपना वर्ण बदलने के लिए नाना प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं। बालों का वर्ण तो ठीक है, जब पकते हैं तब लोग बदलते हैं, लेकिन अपना जो त्वचा का वर्ण है उसको बदलने के लिए कितने जमाने के क्रीम और कितने प्रकार के केमिकल्स यूज करते हैं लोग, और जमाने की चीजें करते हैं। तो उसका कारण क्या था, ये योग वक्रता और विसंवादन। योग वक्रता तो कहीं भी कोई भी करता रहता है, और ये विसंवादन धर्म क्षेत्रों में होता है, क्योंकि सम्यक क्रियाएं जो होती है वो तो आगम सम्मत क्रिया जो करने वाले हैं उन्हीं के पास होती है, तो उनको अन्यथा प्रवृत्ति कराना ये अशुभ नाम कर्म का आश्रम है। च शब्दात, और क्या क्या हो सकता है अशुभ नाम कर्म का आश्रय, बोले मिथ्या दर्शन पैशन्यास्थिर चित्तता कूट मान तुला करण पर निंदात्म प्रशंसादि समुच्चीयते। इसका भी समुच्चय इसमें संग्रह कर लेना अशुभ नाम कर्म में, मिथ्या दर्शन, फिर चुगली करना दूसरों की, मन को अस्थिर रखना, और नाप तौल के सामानों को उसमें घटा बड़ी हो जाए उस तरीके का, अपने अपने स्वार्थ के लिए उसमें कपट करना, दूसरों की निंदा करना, अपनी प्रशंसा अधिक करना, ये सब भी उसमें सम्मिलित है। अशुभ नाम कर्म। अथ शुभ नाम कर्मण आश्रव इत्यत्र उच्यते। अब शुभ नाम कर्म का आश्रव कौन सा है, ये जिससे सनत कुमार चक्रवर्ती जैसा दिव्य रूप प्राप्त होता है। वो इतने सुंदर थे कि सौधर्म इंद्र ने प्रशंसा की थी उनकी कि ईशान इंद्र मुझसे भी सुंदर है और सनत कुमार इससे भी सुंदर है। तो ऐसी सुंदरता कैसे प्राप्त होती है, तो आचार्य उत्तर देते हैं, तद विपरीतम शुभस्य। जो अशुभ नाम कर्म के आश्रव बताया था ना, बिल्कुल उससे उल्टा करने लग जाओ तो फिर ये स्थिति बनेगी। धार्मिक दर्शन सद्भावोपनयन संसरण भीरुता प्रमाद वर्जनादि। वो क्या है, धार्मिक जनों के दर्शन के लिए लालायित रहना। साधु जन है, त्यागी जन है, उनके दर्शनों के लिए बिल्कुल उत्कंठित रहना और उनके प्रति सद्भावना रखना। सम्यक दृष्टियों के प्रति हमेशा अच्छे भाव रखना अपने अंदर। फिर उपनयन यानी जनेऊ धारण करना, ये भी शुभ नाम कर्म का आश्रव है। अब देखिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी के ये वचन है, तो न धारण करना किसका आश्रव है ये समझ लो। इससे विपरीत वो और उससे विपरीत ही है। फिर संसरण वीरुता, चार गतियों में भटकन जो हो रही है उससे डरना कि कितने जन्म धारण करेंगे, बहुत जन्म धारण कर चुके हैं। फिर प्रमाद को छोड़ना आदि, ये शुभ नाम कर्म के आश्रव। किम एतावान एव शुभ नाम न आश्रव विधि, वो तो कश्चित अस्ति प्रति विशेष। क्या इतने ही शुभ नाम कर्म के आश्रव है या और भी है कुछ, तो बोले और भी है। एक सबसे ज्यादा शुभ नाम कर्म होता है जिसकी बराबरी अन्य किसी के साथ नहीं हो सकती, वो इतना उच्च कोटि का पुण्य है कि उसके सामने बाकी सारे पुण्य छोटे पड़ जाते हैं। उस पुण्य का नाम क्या है पता है, तीर्थंकर नाम कर्म, त्रैलोक्य विजय कर्म, तीनों लोक पर विजय प्राप्त करने वाला वो तीर्थंकर नाम कर्म होता है। उसके आश्रव का वर्णन आगामी सूत्र में होगा, वो 16 कारण बताएंगे तो फिर उसको अपन अलग से समझेंगे। जय नम जय तो शास्त्र।